सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी। जब कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन की अनुमति दे दी तो गांधी आंदोलन की प्रारंभिक तैयारियों में जुट गए। इस दिशा में उन्होंने पहला कदम यह उठाया कि सरकार को जनता की दृष्टि में पूरी तरह से गलत सिद्ध किया जाए। गांधी ने एक बार पुनः वायसराय को सोचने का मौका दिया। उन्होंने वायसराय के सामने अपना 11 सूत्री प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि वह उनकी 11 सूत्री मांगों को स्वीकार कर ले तो वे प्रस्तावित आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे। ये 11 सूत्री मांगे इस प्रकार थीं: पहला, मदिरा का पूर्ण निषेध हो। दूसरा, नमक कर का अंत हो। तीसरा, विनिमय की दर में कमी हो और उसे 1 शिलिंग 4 पाउंड कर दिया जाए। चौथा, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए। पांचवा, भूमि कर में कमी हो और उस पर काउंसिल का नियंत्रण रहे। छठा, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। सातवां, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, राजनीतिक मामले वापस ले लिए जाए तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने दिया जाए। पृष्ठ संख्या 68। आठवां, गुप्तचर पुलिस विभाग पर जनता का नियंत्रण रहे। नवां, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। दसवां, भारतीय समुद्र तट कानूनी तौर पर केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे तथा 11वां, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिए जाएं। गांधी की इस उद्घोषणा से सारे कांग्रेस जन आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इन मांगों में कहीं भी स्वराज की बात नहीं कही गई थी। इन मांगों पर गौर करने से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें अधिकांश मांगे राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग की मांगे थीं, किंतु लगान में कमी जैसी कुछ मांगे ऐसी भी थीं जो जनसाधारण को अपील करती थीं। वायसराय ने उक्त प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे यह कहा कि गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम से देश में अशांति और अराजकता फैलने का डर है। सरकार ने दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। सारे देश में खुफिया पुलिस लगा दी गई और कांग्रेस जन तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती में हुई कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में एक बार फिर आंदोलन का नेतृत्व करने और उसके चलाने के सारे अधिकार गांधी और उनके सहयोगियों के हाथों में सौंप दिए गए। गांधी जिन कानूनों को सबसे दमनकारी मानते थे, उनमें से एक नमक कानून भी था। गांधी के अनुसार वह गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया जाना शायद किसानों की समझ में न भी आता, किंतु नमक जैसी दैनिक उपभोग की वस्तु पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में किए गए आंदोलन में किसानों का समर्थन सहज ही प्राप्त किया जा सकता था। गांधी ने यह निश्चय किया कि वे गांव-गांव पैदल चलकर समुद्र तट पर पहुंचेंगे और वहां सार्वजनिक तौर पर नमक कानून तोड़ेंगे। लोगों को आकर्षित करने का यह आदर्श नाटकीय तरीका था, जिसका गांधी की राजनीति सूझबूझ का परिचय मिलता है। सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने 2 मार्च 1930 को वायसराय को एक पत्र लिखा था, जिसमें भारत पर ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों की चर्चा की गई थी और उन 11 सूत्री मांगों का वर्णन किया गया था जो जनवरी में भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। गांधी ने कहा कि यदि अंग्रेज सरकार ने उन मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया तो वह 12 मार्च को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। पृष्ठ संख्या 69। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे: पहला, लोग गांव-गांव में नमक के कानून को तोड़ें तथा नमक बनाएं। दूसरा, महिलाएं शराब, अफीम तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दे। तीसरा, विद्यार्थी सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों को त्याग दें। चौथा, राजकीय कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें। पांचवा, विदेशी वस्त्र जलाए जाएं। छठा, लोग सरकार को कर मत दें। तथा सातवां, जनता को चाहिए कि तकली और चरखा काते और सूत इकट्ठा करें। आंदोलन का प्रारंभ। वायसराय द्वारा किया गया गांधी के पत्र का जवाब अत्यंत असंतोषजनक था। गांधी ने वायसराय के उत्तर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने मांगी थी रोटी और मिला पत्थर। गांधी ने योजना अनुसार अपने 78 चुने हुए शिष्यों के साथ 12 मार्च 1930 को समुद्र के किनारे किनारे दांडी यात्रा शुरू की। करीब 240 मील की पदयात्रा 24 दिनों में पूरी करके वे 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। रास्ते में जनता ने गांधी का संदेश सुना, जिससे प्रभावित होकर बहुत से लोग कांग्रेस के सदस्य बने और अनेक लोगों ने तो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। जनता में जागृति पैदा करने और उसे आंदोलन में शामिल करने में दांडी यात्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 अप्रैल को गांधी ने समुद्र तट से थोड़ा सा नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यह एक संकेत था। वह मुट्ठी भर नमक क्या था, आग की चिंगारी थी। उसके लपटे सारे देश में फैल गई। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने स्वयं नमक बनाकर कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। जिन जगहों में नमकीन पानी या मिट्टी के कारण नमक बनाना संभव नहीं था, उन जगहों पर अन्य कानूनों को भंग करके सत्याग्रह आरंभ किया गया। आंदोलन का विकास। नमक सत्याग्रह इतनी तेजी से फैला कि अप्रैल में ही जन आंदोलनों की बाढ़ आ गई। नमक सत्याग्रह देश के कोने कोने में फैल गया। छात्र स्कूल काले छोड़कर आंदोलनों में कूद पड़े। मजदूरों की हड़ताल और किसानों की लगान बंदी के आंदोलन ने खासकर संयुक्त प्रांत में जोर पकड़ा। मजदूरों और नौजवानों ने आम जनता के साथ मिलकर भारत को मुक्त कराने और समानांतर प्रशासन कायम करने का रास्ता अपनाया। पृष्ठ संख्या 70। लोगों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। किसानों के असंतोष का प्रत्यक्ष कारण आर्थिक संकट था। उन्हें फसलों की कीमत बहुत कम मिलती थी, साथ ही कर की दर में वृद्धि और लगान न दे पाने के कारण किसानों को जमीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। आंदोलन शीघ्र ही अपनी अपेक्षित सीमाओं को पार कर गया। कई प्रांतों में कर बंदी आंदोलन सफलता के साथ चलाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विद्रोह। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई हिम तगार नामक स्वयंसेवक संगठन कायम किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और ब्रिटिश उपनिवेशवासियों के खिलाफ आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। कौमी आज़ादी के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया और पठानों के स्वभाव के विपरीत उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलने की सलाह दी। एक ओर जब अन्य प्रांतों में मुसलमान अपने आप को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने बादशाह खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने रोषपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां भेजी। बाद में जब स्थिति की गंभीरता को देखकर 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन की 3 टुकड़ियां भेजी गईं। मुसलमानों से निपटने के लिए हिंदू सैनिकों को भेजा गया, पर उन्होंने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अपने देशवासियों पर गोली न चलाकर गढ़वाली सिपाहियों ने शानदार मिसाल कायम की। यह एक ऐसी अहिंसा थी जिसने सचमुच अंग्रेजों की नींव हिला दी। सरकार का दमन चक्र और गांधी की गिरफ्तारी। जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, सरकार का दमन चक्र भी तेज होता गया। आंदोलन को दबाने के लिए गवर्नर जनरल ने दर्जनों अध्यादेश जारी किए। जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं को तितर बितर करने के लिए अंधाधुंध लाठियां चलाई गईं और कभी कभी गोलियों की बौछार भी की गई। पृष्ठ संख्या 71। बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। कर न देने वालों की संपत्ति जब्त कर ली गई। इलाहाबाद की सड़क पर जवाहरलाल नेहरू की माँ स्वरूप रानी नेहरू को अंग्रेजों के घोड़ों की टाप के नीचे कुचल दिया गया। इससे आंदोलन और तेज हुआ। सत्याग्रहियों के प्रति सरकार के इस क्रूरतापूर्ण रवैये के प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी ने वायसराय को अपने दूसरे कूच की सूचना दी। उन्होंने सरकार से नमक कर उठा लेने का अनुरोध किया, अन्यथा धर्शाना के नमक कारखानों पर अधिकार कर लेने के इरादों की घोषणा की। इस बार सरकार गांधी का कुछ सहन नहीं कर पाई और 5 मई 1930 को गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी की गिरफ्तारी की उग्र प्रतिक्रिया हुई। अधिकांश नगरों में हड़तालें हो गईं और सब जगह जनता सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने पर तुल गई। सबसे उग्र प्रतिक्रिया धर्शाना में हुई। श्रीमती सरोजनी नायडू और इमाम साहेब के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने 21 मई को धर्शाना नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। श्रीमती नायडू ने सत्याग्रहियों से हिंसा पर न उतरने की अपील की, जिसका उन्होंने अंतिम समय तक पालन किया। गिरफ्तारियों और पुलिस की मार के बावजूद कारखानों पर बार बार धावा बोला गया। पुलिस के हमले का विवरण देते हुए न्यू फ्रीमैन के संवाददाता वेब मिलर ने पुलिस की ज्यादतियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि संवाददाता के रूप में पिछले 18 साल के 22 देशों में असंख्य उपद्रवों, दंगों, फसादों तथा बगावतों के समाचार भेज चुका हूँ, परंतु मैंने धर्शाना में जैसे दुखदायी दृश्य देखे, वैसे मैंने कभी नहीं देखे थे। कभी कभी दृश्य इतना कष्टदायक हो जाता था कि मुझे कुछ क्षण के लिए अपना मुंह फेर लेना पड़ता था। सबसे आश्चर्यजनक बात स्वयंसेवकों का अनुशासन था। ऐसा मालूम पड़ता था कि इन्होंने गांधी के अहिंसा सिद्धांत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आंदोलन की बिगड़ती स्थिति को देखकर वायसराय ने घोषणा की कि अक्टूबर के अंत तक लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा। स्प्रू जैकर समझौते के असफल होने के कारण कांग्रेस का रुख स्पष्ट हो गया था कि वह सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। फिर भी 12 नवंबर 1930 को रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। पृष्ठ संख्या 72। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 57 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के थे। कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। सम्मेलन ने भारत के लिए एक संघ राज्य की योजना बनाई। केंद्र के लिए रक्षा कवचों के साथ आंशिक उत्तरदायी शासन की बात कही गई। प्रांतों में गवर्नर को सर्वशक्तिमान बनाने के साथ साथ उत्तरदायी शासन की बात कही गई। प्रांतों में गवर्नर को सर्वशक्तिमान बनाने के साथ साथ उत्तरदायी शासन की बात पर भी जोर दिया गया। सांप्रदायिकता तथा जातिवाद की समस्याओं पर भारतीय प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हो सका। इसका प्रमुख कारण था, जहां एक ओर मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, वहीं अंबेडकर दलितों के लिए अलग आरक्षण चाहते थे। हिंदुओं के प्रतिनिधि संयुक्त चुनाव पद्धति के पक्ष में थे। इस प्रकार प्रत्येक प्रतिनिधि ने अपने हितों को सुरक्षित करने की पेशकश की, अतः इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सका। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने सांप्रदायिक समस्या को छोड़कर शेष सभी प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी। राजाओं ने संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया, परंतु कांग्रेस ने सम्मेलन के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। देश की परिस्थिति विषम हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सहयोग के अभाव में कोई समाधान संभव न देखकर सरकार ने गांधी एवं अन्य नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। सर तेज बहादुर स्प्रू जयकर तथा रामनिवास शास्त्री के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत सरकार ने निम्नलिखित आश्वासन दिए। पहला, सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगी जिन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है। दूसरा, सरकार सभी अध्यादेशों एवं क्रांति से संबंधित चालू मुकदमों को वापस कर लेगी। तीसरा, सरकार समुद्र के निकटवर्ती लोगों को बिना टैक्स के नमक इकट्ठा करने या बनाने देगी। चौथा, सरकार सत्याग्रहियों की जब्त की हुई संपत्ति वापस कर देगी। पांचवा, सरकार शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देगी। पृष्ठ संख्या 73। कांग्रेस के आश्वासन। प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने निम्नलिखित आश्वासन दिए। पहला, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक देगी। दूसरा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी तथा उत्तरदायी शासन को अभिरक्षणों एवं रक्षा कवचों सहित स्वीकार कर लेगी। तीसरा, गांधी पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जांच पड़ताल की मांग पर जोर नहीं देंगे। चौथा, कांग्रेस अपने सभी प्रकार के आंदोलन वापस ले लेगी। समझौते की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के बहुमत ने समझौते का स्वागत किया, परंतु वामपंथी नेताओं तथा युवकों ने इसका घोर विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे कांग्रेस की पराजय कहा। जवाहरलाल नेहरू को संरक्षण की व्यवस्था से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि संरक्षण की व्यवस्था और स्वतंत्रता में कोई मेल नहीं है। गांधी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी को नहीं बचा सके, जिसमें युवकों को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। टाइम्स नामक समाचार पत्र ने स्पष्ट कहा कि यह ब्रिटिश सरकार की विजय थी, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस संबंध में रजनी पामदत्त ने टिप्पणी की कि गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस की कोई भी मांग पूरी नहीं की गई, यहाँ तक कि नमक कानून भी नहीं हटाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने उस गोलमेज परिषद में भाग लेना स्वीकार किया जिसका बहिष्कार करने की उसने शपथ ली थी। स्वराज की दिशा में भी कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 में तीव्र विरोध हुआ। नवयुवकों ने इसका विरोध किया और गांधी को काले झंडे दिखलाए, किंतु गांधी की संवेदनपूर्ण अपील के फलस्वरूप कांग्रेस अधिवेशन ने इसका अनुमोदन किया और उनको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। पृष्ठ संख्या 74, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होने के पूर्व इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मजदूर दल की सरकार के स्थान पर एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें मजदूर, अनुदार और उदार तीनों दल सम्मिलित हुए। सर सैमुअल होर भारत सचिव नियुक्त हुए। लॉर्ड इरविन जैसे उदारवादी के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन वायसराय नियुक्त हुए, जिनकी गांधी इरविन समझौते के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं थी। इन राजनीतिक परिवर्तनों से गांधी इरविन समझौते को गहरा धक्का लगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को इंग्लैंड में आरंभ हुआ तथा दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस की ओर से गांधी ही एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। वायसराय के विशेष आमंत्रण पर मदन मोहन मालवीय एवं सरोजनी नायडू ने सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। इसी बीच अक्टूबर महीने में इंग्लैंड में कॉमन सभा का आम चुनाव हुआ, जिसमें अनुदार दल को पूर्ण सफलता मिली। इस बदली हुई परिस्थिति में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक दिखावा मात्र रह गया। ब्रिटिश सरकार गांधी इरविन समझौते को तोड़ने का प्रयत्न करने लगी तथा उसने भारत में अपनी परंपरागत साम्राज्यवादी नीति फूट डालो और राज करो को फिर से तूल दिया। जकारिया के अनुसार यदि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते तो हमारे लिए अधिक लाभप्रद होता, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार थी और उस समय तक कोई निर्णय भारत के संबंध में नहीं किया गया था। सम्मेलन में गांधी को जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। क, कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करने की चेष्टा की। ख, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ग, पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा प्रतिरक्षा पर भारतीय नियंत्रण की मांग की। यह और बात है कि ब्रिटिश सरकार इन मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या और भी जटिल बन गई तथा इस समस्या पर कोई भी समझौता न हो सका। विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि अपने अपने संप्रदाय के लिए लड़े। मुसलमानों, सिखों तथा दलितों ने अपने अपने लिए पृथक प्रतिनिधियों की मांग की। दूसरी ओर सरकार ने मुसलमानों के साथ एक प्रकार का अनौपचारिक गठबंधन सा कर लिया था, पृष्ठ संख्या 75, जिसका उसने कांग्रेस के विरुद्ध प्रयोग किया। इस प्रकार समझौते के सारे प्रयत्न विफल रहे। गांधी इस षड्यंत्रपूर्ण वातावरण से विक्षुब्ध हो उठे और निराश होकर स्वदेश लौट आए।